भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम दर्शन स्कंद अंतिम अध्याय श्लोक श्लोक पांच
हरिद्रा
जय
में इतिहास सुनाने वाले तथा सामान्य वाचकों ने ध्वनि की, जबकि गवयों ने भेरी, बंदूकी आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की संगत में गाया, तो उसमें कोई तात्पर्य नहीं, इसलिए छठा तो कंपाट करेंगे। ज्यादा समृद्ध संक्षिप्त द्वारा धीर गुहांधर चित्र ध्वज पथकाश्र जैल पल्लव तोरणी। अर्थात नंद महाराज का निवास ब्रजपुर रंग बिरंगी झंडियों तथा झंडों से पूरी तरह सजाया गया था और विभिन्न स्थानों पर नाना प्रकार के फूलों की मालाओं, वस्त्रों तथा आम की पत्तियों के द्वार बनाए गए थे। आंगन सड़कों के पास के दरवाजे तथा घरों के कमरों की भीतर की सारी वस्तुएं अच्छी तरह से झाड़ बुखार कर पानी से धोई गई थी। तो उसके बाद ये सपना शुरू करता है। गाँवों भूसा लक्षतरा हरिद्रा प्रदूषिता विचित्र धातु बरास्त्र वस्त्र कांधन मारना। तो ये भगवान के आनंद में भगवान आविर्भाव हुए हैं, इसलिए नंद में ब्रज में आज नंद के प्रसाद सभी ब्रजवासियों ने आनंद मचाए हुए हैं। तो ये हम इससे हम पता लगा सकते हैं किस तरह का वो वैश्य कम्युनिटी जो है, वैश्य कम्युनिटी, तो कितने धनी थे। जो गांवों के कांचन मारना, गांवों के शरीर में वो स्वर्ण का माला है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह का वो ब्रजवासी ने किस तरह का सुखी धनी थे। गांवों के शरीर में वो स्वर्ण के माला बनाते थे। तो आजकल मनुष्यों के भी स्त्रियों को भूषण नहीं मिलता है, खासकर पाश्चात्य जगत में तो सुवर्ण नहीं मिलता है, बहुत रेयर मिलता है। तो ये इतने जो जो उत्सव अगर वो वर्णन पर किया जाएगा उससे थोड़ा डाउट हो सकता है, परीक्षित महाराज को थोड़ा संदेह हो सकता है, इसलिए 1800 में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हरि निवास आत्मगुणी। जो भगवान भगवान होते हैं तो हरि निवास आत्मगुणी रमा प्रियन अवन रूप, रमा साक्षात श्री श्री जी लक्ष्मी जी वहां सेवा करते हैं, ब्रजवासियों की सेवा करते हैं। जो लक्ष्मी देवी लक्ष्मी जी जो वैकुंठ में पूजित होते हैं, सब लक्ष्मी नारायण को पूजा करते हैं, वही लक्ष्मी देवी ब्रज में ब्रजवासियों की सेवा करते हैं। जो साक्षात लक्ष्मी देवी है तो क्या कहना है। तो इसलिए इस श्लोक में बताया गया है, 18 श्लोक में बताया गया है, आराध्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान। क्योंकि भगवान आए हैं तो भगवान के मतलब सिक्स ऑपुलेंसेस से छठ ऐश्वर्य है भगवान, जो पराशर नहीं भगवान का संज्ञान दिया है। ऐश्वर्य से समग्र वीर्य से दशमस्त्रिय ज्ञान विज्ञान ज्ञान वैराग्य चैव सन्नाम इति भगवाना। ये षड ऐश्वर्य है भगवान के। भगवान तो मतलब क्या है, तो जो षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है वो भगवान है। सब ऐश्वर्य उनके पास है भगवान, पूर्ण मात्रा में है ऐश्वर्य, जितने धन है ये सब उनका है, इतना धन है। हमारा टीम में बहुत धनी लोग होते होंगे लेकिन कोई नहीं कर सकता है, सब धन हमारा है, लेकिन भगवान का, भगवान के अधीन में सब धन, तो जितने भी धन है ये सब उनका है। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य, जितने शक्ति होते हैं ये सब शक्ति भगवान के हैं, हम जो शक्ति पाते हैं वो उनसे पाते हैं। बलम बलवता अध्याय में बताए गए हैं, हमारा जो बल है वो भगवान देते हैं, जो भगवान ले दूसरा कर लेते हैं, ले जाते हैं बल, तो पार्टिस हो जाता है, चल नहीं सकते, तो हमारा बल खत्म हो जाता है। ये भगवान देते हैं हमको बल, भगवान देते हैं, उनके पास सब बल है, वीर्य है, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से दस, भगवान का दस सब समय रहता है, भगवान ही सब सबसे यशस्वी है, सबसे अधिक यशस्वी भगवान है, लेकिन भगवान उनके भक्तों को दस देते हैं। जैसे भगवद गीता दसवें अध्याय में बताया गया है ये तस्मात् मुत्तिष्ठा यशो रमस्व जित्वा सत्रं भयंकर राजन समृद्धं मये एता नियता पूर्वमेव निमित्त मात्र अवस्व प्रसाद। जब महाभारत युद्ध में जो अर्जुन ने विजयी हुए, जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ दामोदर तत्र से विजय भूति ध्रुवा नित्य मति मम, ये लास्ट श्लोक है भगवद गीता का, संजय बताए हैं। जहाँ भगवान के भक्त हैं, तत्र जहाँ भगवान है, तत्र भगवान के पार्षद है या भक्त है, तत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर तत्र वहाँ श्री सब संपद वहाँ होगा, संपदा वहाँ होगी, विजय वहाँ विक्री होगा, विजय होगा। और भूति मतलब जो अपोनेंसेस होते हैं विभूति होते हैं तो वहाँ सब होगा, और ये ध्रुवा और नीति, नीति भी वहाँ रहेगा, और ये ध्रुवा रहेगा, ध्रुवा मतलब सब समय रहेगा, ये संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को। ये बताने का मतलब है, आचार्य ने टीका में कहे हैं, इसका मतलब है संजय कहते हैं धृतराष्ट्र जी को, अभी भी समय है, अगर आप चाहेंगे तो मैसेज भेजकर पांडव के साथ संधि कर लेंगे, इस करने से आपका पुत्र सब बच जाएंगे। लेकिन धृतराष्ट्र उसको नहीं सुना, धृतराष्ट्र सोच रहे थे नहीं हमारा पुत्र विजय होंगे, भगवद गीता सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र ऐसे सोचते थे, लेकिन संजय बताया नहीं तुम्हारा पुत्र विजय नहीं होगा, ये पांडव सब विजय होंगे क्योंकि वहां भगवान है और भगवान भागते हैं। फिर भी धृतराष्ट्र महाराज ने ध्यान नहीं दिए, तो वो जो विजय हुआ पांडवों का जो विजय हुआ, इससे जो श्रेय जाता है, जो कौन सा जो कौन विजय हुआ वो पांडव विजय हुए, इस तरह का दस फैल गया। लेकिन एक्चुअल जो विजय हुआ है, जो एक्चुअल दस है वो भगवान के, भगवान बताए तस्मात् उत्कृष्ट यशो रहस्य अर्जुन तुम जागो, तुम जागृत हो जाओ और तुम यशो रहो, तुम विक्री तुम्हारा यश होगा, मैं सबको निधन किया हूं, मैं तो नियता पूर्वमेव, पूर्व मतलब जिस समय जो हस्तिनापुर में जो राजसभा में जो दुर्योधन ने द्रौपदी का पक्ष स्पर्श किए हैं, केश को स्पर्श किए, उसी समय उनका सब निधन हो गया था, पूर्व में वो, पिछले बताए भगवान बताते हैं पूर्व में वो,
निमित्त मात्र भव सभ्यचारी
सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनना निमित्त बनना
भगवान का तो सब दस है लेकिन जो भगवान भक्त होते हैं
भगवान की दस भगवान उनको देते हैं भगवान भक्त को देते हैं।
जैसे महाप्रभु आए थे 532 साल पहले आए थे चैतन्य महाप्रभु तो वो चाहते थे तो सारे विश्व में भी भगवान का नाम प्रचार कर सकते थे लेकिन वो चाहते हैं उनका भक्त का दर्श मिले इसलिए उन्होंने भविष्यवाणी दिए थे पृथ्वी के अचलत नवराज ग्रह सर्वत्र प्रचार भैव होना जो ये भविष्यवाणी दिए थे तो ये इस भविष्यवाणी को श्री प्रभुपाद महाराज ने सफल किए तो आज प्रभुपाद के दर्श सारा पृथ्वी में फैल जाता है फैला हुआ है तो प्रभुपाद के दर्श जहाँ भी जाएंगे प्रभुपाद का दर्श गाता गाते रहते हैं जय प्रभुपाद की। तो इस तरह ये दर्श भगवान के हैं लेकिन ये उनको भक्त को देते हैं इस तरह जो जो भगवान का संज्ञा क्या है ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से दश से श्रेय श्रेय मतलब सौंदर्य भगवान के सौंदर्य के सामने किसी का सौंदर्य नहीं इक्वल हो सकता है नहीं समान हो सकता है। तो वो जो ज्ञान है भगवान का जो ज्ञान है वो ज्ञान अनंत है तो उन्होंने ज्ञान दिए हैं प्रभुपाद को बताते हैं तात्पर्य में वेदों में भगवान ने ज्ञान दिए हैं और ये भौतिक जगत में जो भी है वो अंधकार में अज्ञान में है जो जन्म लेते हैं तो अज्ञान में जन्म लेते हैं जैसे भागवत में बताया गया है परावत सावत अबोध जावत जावत न विज्ञान तथा आत्मतत्व जावत क्रिया सावधिक मन भी कर्मात्मक जैन शरीर बंध ये भागवत में पंचम स्कंध में ये शब्द बताते हैं उनके सौ पुत्र हैं उनको बताते हैं परावस्थावत अबोध जागृत क्योंकि हम जो जन्म लिए हैं हम अज्ञान में जन्म लिए हैं इसलिए क्योंकि हम अज्ञान में हैं हमारा कैसे जय होगा हम पराभव होगा पराजय होगा हमारा पराजय होगा परावस्थावत अबोध जागृत जागृत न विज्ञान तथा आत्मतत्व जितने दिन तक हम आत्मतत्व के बारे में जिज्ञासा नहीं करेंगे तो उसी दिन तक हमारा जय नहीं होगा हमारा पराजय नहीं होगा। जैसे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे गवेषणा करते हैं बहुत सारे जिज्ञासा करते हैं लेकिन आत्मतत्व के बारे में जिज्ञासा नहीं करते हैं तो वो जो विज्ञान का जो इन्वेंशन हुआ है जो नया नया उद्भावन होता है उससे हमारा जो भौतिक जगत का मूल समस्या है भौतिक जगत का मूल समस्या क्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुसान प्रसन्न प्रभुपाद कहते हैं ये वैज्ञानिकों के लिए भगवान का चैलेंज है भगवान चैलेंज करते हैं ये जो तुम कितने उद्भावन करते हो तो ये जो मूल समस्या है ये जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है भौतिक जगत का बाढ़ डेथ गोल्डन एंड डिजीज जन्म मृत्यु जरा क्या है उसको समाधान कर सकते हैं क्या वैज्ञानिकों ने जितने गवेषणा किए हैं जितने उद्भावन किए हैं उससे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं क्या। तो इस तरह जो वैज्ञानिकों ने जितने भी इन्वेंशन किए हैं जितने भी उद्भावन किए हैं ये सब परास्त होता है उसी इन्वेंशन से हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते और फिर भी जो कुछ भी विक्ट्री होता है वैज्ञानिक का जो कुछ भी जय होता है मृत्यु सर्वहरस्ता भगवत गीता दशम अध्याय में भगवान बताते हैं मृत्यु से भगवान सब सब ले जाते हैं सर्वहरस्ता। तो ये भगवान के मतलब यही से है सब ज्ञान है
वो ज्ञान भगवान ने वेद उपनिषद में दिए हैं। चैतन्य भागवत में बताया गया है माया मंत्र जीवे नामी कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवे कृपाय कृष्ण कैल वेद पुराण। हमारा भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है माया मंत्र, क्योंकि हम इस भौतिक जगत का जो माया है सत्य रज काम के गुण में हम बद्ध होते हैं। तो हमारा जो भगवान के साथ जो संबंध है ये संबंध ज्ञान हमारा नहीं है। हमारा संबंध ज्ञान क्या है इस भौतिक जगत में होते हैं, ये हमारा पिता है, ये हमारा माता है, ये हमारा भाई है, ये हमारा बहन है, इस तरह का हम संबंध बताते हैं। ये भौतिक जगत के संबंध बताते हैं हम, क्योंकि हमारा लेकिन हमारा जो संबंध है चिरंतन संबंध है, इटरनल रिलेशनशिप है हमारे भगवान के साथ, जिसको हम भूल गए हैं। इसलिए वेद परिषद का पढ़ना चाहिए। चैतन्य भागवत में बताया गया माया मुक्त जीवे नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान। हमारा जो ओरिजिनल इटरनल रिलेशनशिप जो है चिरंतन संबंध है भगवान के साथ, उसको हम भूल गए हैं। इसलिए भगवान ने ये वेद पुराण को दिए। तो वेद पुराण से जो ज्ञान है उसी ज्ञान से हम जान सकते हैं संबंध अभिदय और प्रयोजन। भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, संबंध ये राधा मदन मोहन ने वो बताते हैं। संबंध राधा गोविंद जी जो है वो बताते हैं अभिजय भक्ति कैसे करना चाहिए, और जो गोपीनाथ जी है वो प्रयोजन तत्व है कृष्ण प्रेम। ये वेद में ये तीन तत्व होते हैं। तो वेद को हम अगर नहीं पढ़ेंगे भगवद गीता भागवतम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे आनंद में रह सकते हैं। लेकिन वो जो आपका प्रश्न हो सकता है जब रात में तो वेद या पुराण नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन पढ़ते हैं ये पता है, ये अभी कहते हैं इस पंचांग श्लोक में बताते हैं जो भगवान के जो आशीर्वाद हुआ है। तो जो सूत्र है वो पौराणिक होता है, पुराण पढ़ते थे इतिहास पुराण ये सब महाभारत ये सब पुराण उसको बोलते थे। तो जो सूत कहते थे वो पुराण बोलते थे, और जो भागवत है वो वंश परंपरा को बोलते थे, और जो बंदिना है वो अमर प्रज्ञा बोलते हैं। उनका ज्ञान अमर है, उनका ज्ञान एक भौतिक जगत का से ऊपर है, भौतिक जगत का जो गुण है उसको मार बोलते हैं। तो उनका ज्ञान अमर ज्ञान होते हैं, अमर ज्ञान। तो भगवान के बारे में बताते हैं कैसे भगवान को संतुष्ट करना है, इसलिए वो जो स्वस्ति बात बोलते थे। जैसे ऋग्वेद में कृष्ण प्रसन्न उपनिषद में ये मंगल स्वस्ति बात है ओम स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो अच्युतानंद स्वस्ति नो वासुदेव विष्णु दधातु स्वस्ति नो नारायण हृदयी स्वस्ति नो पद्मनाभ पुरुषोत्तम दधातु स्वस्ति नो विश्वक्षेण विश्वेश्वर स्वस्ति नो ऋषिकेश हरि दधातु स्वस्ति नो वैनंदो हरि स्वस्ति नो अनिनाशित अनुभागवत दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगल केशव महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद अनंत विश्वेश्वर दधातु। इस तरह का स्वस्ति वादन होता था, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वादन करते थे। स्वस्ति गोविंद स्वस्ति गोविंद ये हमारा कैसे मंगल होगा। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने या बहुत सारे ज्ञानवान व्यक्ति ने वो सोचते हैं कैसे मंगल प्राप्त होंगे, बहुत सारे धन कमाएंगे तो उससे हम उपभोग करेंगे इससे हमारा मंगल होगा। लेकिन नहीं, इससे हमारा मंगल नहीं होगा, क्योंकि ये भौतिक जगत अमंगलमय है।
श्रीमद् भागवत में बताया गया है, ये श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंध में द्वितीय अध्याय में ब्रह्मा जी बोलते हैं, नहीं ये अन्य शिव पंथा, सुखदेव वचन बताते हैं परिचित महाराज को, नहीं ये अन्य शिव पंथा विषता संस्कृता व्य, इस भौतिक जगत का जो है वो अमंगलमय है। वो अमंगल क्या है, तो मुक्त ग्रह व्याधि ये अमंगल है। तो इसी अमंगल जगत में और कोई पंथा नहीं है, ना ये तो अन्य मंगलमय पंथा और कुछ नहीं है। एकमात्र मंगलमय पंथा क्या है, वासुदेव भगवती भक्ति योग भवे। जब हम भगवान भगवान जो वासुदेव है, वसुदेव पुत्र है, जो भगवान है, हम भगवान की संज्ञा बताए हैं, तो वासुदेव भगवती भक्ति योग भवे। हम अगर भगवान को भक्ति करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वासुदेव भगवती भक्ति योग भवे, भगवान को भक्ति करेंगे तो ही हम मंगल पा सकते हैं। तो इसलिए ऋग्वेद में बताया गया है, स्वस्तिनो गोविंदो, गोविंद हमको स्वस्ति देंगे, मंगल देंगे। स्वस्तिनो वासुदेव अनंतो, स्वस्तिनो गोविंदो, स्वस्तिनो अच्युत अनंतो। अच्युत भगवान के नाम अच्युत है, भगवत गीता में अर्जुन बताए हैं, भगवान को बोलते हैं सेनोय भगवान बने रथम स्थापन अच्युत। जो ये तो अगर फिर भी क्योंकि वो भगवान है, ये भगवान है, फिर भी उन्होंने सारथी का कार्य कर रहे हैं, ड्राइवर का कार्य कर रहे हैं। तो अर्जुन ने भगवान को ऑर्डर देते हैं, सेना दुबार मध्य रथम स्थापन अर्जुन, आप सेना उभय सेना के बीच में हमारा रथ को स्थापन करो। तो वहां वो भगवान का नाम लेते हैं, अच्युत लेते हैं। वो ड्राइवर सारथी का काम करने से भी वो भगवान है, वो सब समय भगवान ही है, इसलिए उनका नाम अच्युत है। तो उनका नाम भी अनंत है, अनंत मतलब भगवान का अंत नहीं होते हैं, जितने भी भगवान के गुण गाते हैं हम गाएंगे वो खत्म नहीं होगा, इसलिए उनको अनंत होता है। अनंत रक्षण नाम अंत ना पाया, ये कृष्णा अशुद्ध सत नाम में ये बताया गया है। तो अनंत देव जो है, जो आदिदेव अनंत देव बोलते हैं, उनका 1000 मुख है, 1000 मुख है, वो ये भौतिक जगत को धारण किए हैं। ये भौतिक जगत का ब्रह्मांड जो है उसका विस्तार कितना है, 50 कोटि योजना, 400 कोटि माइल, ये भौतिक जगत का विस्तार है। और भगवान अनंत देव ने उनका जो 1000 खड़ा है फण है, उसी फण से एक ही फण में ये भौतिक जगत को धारण किए, फिर भी उनको भारी नहीं करता है, इतने सारे वजन है, फिर भी उनको मालूम नहीं पड़ता है कहाँ पर है, सरसों की तरह है बताया गया है कथित चर्चा में, सरसों की तरह है। एक बार हमारा गुरु स्वामी बताते थे, एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी वहां गए, वशिष्ठ और विश्वामित्र प्रसिद्ध ऋषि है, उनके बीच में झगड़ा हो गया कौन बड़ा है, विश्वामित्र बड़ा है या वशिष्ठ जी बड़ा है। तो गए वहां गए अनंत देव के पास गए, ये जो भागवत आता है एक परंपरा है, उनसे आते हैं भागवत, उनसे आते हैं भगवान अनंत देव भागवत बढ़ते रहते हैं, सब समय 1000 मुख से भगवान का गुण गाते हैं, वो भागवत है। तो उन्होंने उन दोनों ऋषियों ने भगवान के पास जाकर प्रणाम करके और उनको बताए, उनको पूछे प्रभु जी हमारा जो झगड़ा हुआ है उसको समाधान कीजिए, क्या समाधान, क्या झगड़ा हुआ है ना, हम में कौन बड़ा है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं समाधान दूंगा, पहले तुम इसको धारण करो, कोई इसको धारण करो, उसके बाद समाधान देंगे। तो विश्वामित्र जी पहले चेष्टा किए, कोशिश की, लेकिन नहीं धारण कर सकते, लेकिन बाद में जो वशिष्ठ जी है वो धारण किए, उनका जो शक्ति इतना था। तो अंतदेव बोले अभी तुम्हारा समाधान हो गया और कुछ बाकी है। तो ये अनंतदेव भगवान के गुण गाते रहते हैं, सब समय भगवान के गुण गाते रहते हैं। भागवत द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय में ब्रह्मा बोलते हैं नारद को, नांदम विलावामी मुनयोगे माया वरस्य पुरुषस्य कृतो बराधे गायन्ति गुणान् आदिदेव शेषो गुणाभि समवर स्थितिनास्ति पारम। भगवान अनंतदेव ने 1000 मुख से भगवान के गुण गाते हैं, हम तो एक मुख में का गुण गाते हैं। ब्रह्मा जी चतुर्मुख में भगवान के गुण गाते हैं, महादेव जी पंचमुख में भगवान के गुण गाते हैं, सब भगवान के गुण गाते हैं। जो जितने बड़े लोग हैं वो भगवान के गुण गाते हैं, जितने छोटे लोग हैं वो भगवान के गुण नहीं गाते हैं। ये बोधि रंग का गुण गाते हैं, ये गुण का गुण गाते हैं, त्रिगुण जो है सत्व रजता इसी गुण का गुण गाते हैं। तो आनंददेव ने नांदम विदामहमि ब्रह्मा जी बताते हैं नारद को, नारद उनका पुत्र है, तो बताते हैं बेटा वो जो भगवान है उनका अंत कोई नहीं जानता है, हम मैं नहीं जानता हूँ। नांदम विदामहमि मुनयो प्रजा से तुम्हारा जो बड़े भाई हैं, चार कुमार हैं और श्रीमती हैं, वो भी उनका अंत नहीं पाते थे पाते हैं। नांदम विदामहमि मुनयो प्रजा से माया परस्य पुरुषस्य कृतो बराधे, और जो छोटे लोग सब हैं जो माया में हैं, जो सत्व रजत त्रिगुण सत्व रजतम इस गुण में हैं, उनका क्या कहेंगे। गायन गुणान दशशतान आदिदेव, आदिदेव जो अनंत देव है उनका 1000 मुख से भगवान के गुण गाते हैं। शेषो गुणाभि समवस्थिति नास्ति पारम, आज तक वो खत्म नहीं हुआ है, शेष नहीं हुआ है। शेषो गुणाभि समवस्थिति नास्ति पारम, भगवान के गुण ही है, इसलिए भगवान को अनंत बताते हैं। वही अनंत भगवान को हमारा मंगल प्रदान करे, इस तरह का स्तुतिवाचन करते थे ब्राह्मण में। उसी जो फेस्टिवल हो रहा था, उत्सव हो रहा था, नंदोत्सव हो रहा था, और स्वस्तिनो वासुदेव विष्णु तधातु, वासुदेव वासुदेव शब्द का अर्थ क्या है श्रीमद् भागवत में बताया गया है, फोर्थ चैप्टर में शिवजी बताते हैं कि वासुदेव शब्द का अर्थ। सत्वं विशुद्धं वसुदेव सर्दितं यदि यते तत्र गुहान पावता सत्वीत तस्मिन् भगवन् वासुदेवे ही अलोक्षरमीन हसात दियते। शिवजी सब समय भगवान को प्रणाम करते हैं, सब समय मनसा दियते, मन में सबसे भगवान के बारे में सोच रहे सोचते हैं और भगवान को नमस्कार करते हैं। तो उन्होंने सती देवी से बोले, क्योंकि दक्ष सतीदेव के पिता जो दक्ष है जो ब्रह्मा के पुत्र है, वो एक यज्ञ किए, वहाँ सब देवताओं को बुलाए लेकिन शिवजी को नहीं बुलाए, और उनका कन्या जो है सती उनको भी नहीं, वो छोटा कन्या है, 16 लड़की है, 16 डॉटर से दक्ष करते हैं। ये जो सती है वो सबसे छोटी थी, उनको नहीं बुलाया। तो सती का जब आग्रह प्रकाश किए कि हम जाएंगे पिता के घर में जाएंगे, वहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन शिव जी ये बताए कि श्लोक बताए तुमको, बोले सत्वम विशुद्धम वसुदेव सर्दितम, वसुदेव शब्द का अर्थ क्या है, वो विशुद्ध सत्व है। धोत्री जगत का जो गुण है 3 गुण है, सत्व रजतम 3 गुण है, लेकिन उससे ऊपर जो है वो विशुद्ध सत्व है, जिसको वसुदेव बोलते हैं। भगवान क्यों वसुदेव पुत्र बने, क्योंकि वसुदेव ने शुद्ध सत्व स्तर में थे। अगर हम शुद्ध सत्व स्तर पर आएंगे तो हम भगवान को पा सकेंगे। जो सत्यम विशुद्धम वसुदेव संविदम जब एक तत्व मान का होता है, अगर हम उस शुद्ध सत्य स्तर को जाएंगे तो हम जो ये तीन गुण में आवृत होकर रहते हैं उससे अपारता, उससे मुक्त हो जाएंगे, गुण से ऊपर चढ़ जाएंगे, ब्रह्मभूत उसको ब्रह्मभूत स्तर बोलते हैं। सो श्रीजी बताते हैं सत्वम विशुद्धम वसुदेव सत्यतम जब ये तत्व मान होता सत्वित तस्मिन् भवन वास देंगे। तो इसलिए शिव जी को वासुदेव जो वसुदेव वसुदेव के पुत्र जो वासुदेव है उनको सब समय वो नमस्कार विधि होती है, सब समय भगवान को प्रणाम करते हैं शिव जी। तो स्वस्तिनो वासुदेव विष्णु का धातु, विष्णु का मतलब क्या है श्रीमद् भागवत में बताया गया है, जैसे दशम स्कंध तृतीय अध्याय में वो परीक्षित ने प्रश्न पूछे भगवान ने क्यों ये सब गरीब कर्म क्यों किए, जुगुप्सित कर्म क्यों किए, निंदनीय कर्म क्यों किए, जो दूसरे के पत्नियों के साथ जो रास रास बनाए रास रचाए तो ये अधर्म हो गया, इसे क्यों किए। तो उसका उत्तर में सुखदेव बताते हैं जे विक्रीतम व्रजवधूमि इदं च विष्णु, वो विष्णु शब्द लगाया। अगर क्यों कृष्ण ने वो रास बताए थे, कृष्ण ने वो वहाँ विश्वनाथ करते हैं वहाँ तिरिस कोटि गोपी थे लेकिन कृष्ण ने उनके साथ रास किए, लेकिन सुखदेव बताते हैं विष्णु ने रास किए। क्योंकि विष्णु नाम क्यों लिया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने विस्तार अपने आप को विस्तार किए, जितने गोपी थे उतने ही अपने आप को विस्तार किए, इसलिए विष्णु शब्द यूज हुआ है। विष्णु है ये जो हम अगर सुनेंगे विक्रीडितं व्रजवधूः इदं च विष्णु, विष्णु ने जो व्रजवधू के साथ जो रास किए थे श्रद्धांत अनुसुनिया, श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ अगर हम सुनेंगे गुरु से परंपरा में सुनेंगे सबसे सुनने से वो फल नहीं मिलेगा। बताया गया है कि भगवान के बारे में जब हम सुनेंगे कहाँ से सुनेंगे, ना अवैष्णव मुखद्वेन उत्तम हरि कथा मतम श्रवणम नैव कर्तव्य, जो वैष्णव नहीं है उनसे मुख से भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहिए। सनातन गोस्वामी बता रहे क्यों नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट तथा पर जो गाय का दूध देते हैं वो अमृत होते हैं, लेकिन उस दूध को अगर सर्प पी लेगा या मुंह लगा देगा तो ये और अमृत नहीं रहेगा, विष हो जाएगा, उसका उलट विपरीत फल होगा। तो भगवान के बारे में इसलिए चैतन्य चेतना भगवान महाप्रभु बताते हैं जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थानी एकांत आश्रय वाला चैतन्य चरण, हम भागवत जहां तहां नहीं सुनेंगे, जो वैष्णव है उनसे, जो वैष्णव कौन सा वैष्णव जो चैतन्य के आश्रय में चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में उन्हीं वैष्णव से हम भागवत सुनना चाहिए। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। तो ये जो विष्णु है विष्णु का जो ये लीला हुआ था भगवान विष्णु का जो लीला हुआ था श्रद्धांत अनुसुनिया गुरु से परंपरा में हम अगर हम सुनेंगे अथवा वर्णे या कोई वर्णना करेगा कीर्तन करेगा तो क्या होगा, ना भक्ति परां भगवती प्रतिलब्ध काम और भगवान से भक्ति आ जाएगा, भगवान से भक्ति उत्पन्न होना बना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये भक्ति भगवत जगत बोध जगत का नहीं है, ये भक्ति बोध जगत के पार जो है जीव जगत का है वस्तु है भक्ति। फिर भी इस बोध जगत में भी हम अगर भगवान के बारे में सुनेंगे भगवान के जो लीला सब है उनके बारे में सुनेंगे तो हमारे हृदय में वो भक्ति सुप्त रूप में है, भक्ति सुप्त रूप में है, अभी वो जागृत होगा। भक्ति उत्पादित तुम सब, तो भक्ति परम भगवती परम भक्ति श्रेष्ठ भक्ति हम लाभ कर पाएंगे, शुद्ध भक्ति पाएंगे। भक्ति कई तरह का है, कर्म मिश्रण भक्ति है, ज्ञान मिश्रण भक्ति है, केवला भक्ति है, अशुद्ध भक्ति है, उसी शुद्धि शुद्ध भक्ति हम पाएंगे। भक्ति परम भगवती प्रतिलब्ध कामा, तो उस भक्ति जो पाएंगे तो उसके फल से क्या होगा ना, वो हमारा जो हृदय में जो काम क्रोध रोग मोह ये सब रिपु होते हैं वो चले जाएंगे। काम रुद्रोग, ये रुद्रोग है, जैसे हमारा बहुत सारे रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन ये जो भाव रोग है, ये काम रोग है, इसका कोई मेडिसिन नहीं है, कौन सा डॉक्टर के पास वो मेडिसिन नहीं है, लेकिन वो जो व्यास देव है वो वैद्य है, तो साधु वैद्य है, उनके पास वो मेडिसिन है। वो मेडिसिन क्या, व्यास देव ने जब सब शास्त्रों का रचना किए, उसके रचना करके बाद भी वो शांति नहीं प्राप्त होते थे, संतोष नहीं प्राप्त होते थे, तो नारद ने बताया श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध पंचम अध्याय बताए, तुम जो इतने सारे शास्त्र लिखे हैं, वेद उपदेश सब लिखे हैं, उससे भगवान के नाम रूप गुण लीला इस विस्तार से नहीं वर्णन किए, उसमें आपने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके बारे में विस्तार से बताया। तो नारद मुनि चले जाने के बाद व्यासदेव भगवान को ध्यान किए, भक्ति योगे नमसी सम्यक प्रणीत अमड़े अपश्य पुरुषम पूर्णम माया कृतपाश्रय। वो भक्ति योग ने भक्ति योग से भगवान के ध्यान किए, तो उनके हृदय में जो माप थे या गुण का प्रभाव था वो चला गया। ये ऐसे उत्तर भाव में बताए गए हैं, लेकिन वो जो व्यासदेव है वो भगवान के अवतार है, उनके हृदय में माप कैसे आएंगे, तो ये हमारे बारे में बताया गया। हम भगवान को अगर भक्ति करेंगे ध्यान करेंगे, हमारे हृदय में जो मल है तो सत्व रजत तम त्रिगुण का जो प्रभाव है वो चला जाएगा। चेतो दर्पण मार्जन, हमारा चेत रूप का जो दर्पण है वो सफल हो जाएगा। उसी हृदय में व्यासदेव ने भगवान को देखे, आपस पुरुषम पूर्ण पूर्ण पुरुष को देखे, पूर्ण पुरुष कौन है, वो है कृष्ण है। अपशत पुरुषों को माया के तत्पाश्रय कैसे देखे भगवान को, तो भगवान के पीछे माया देवी है, हमारा माया देवी देवी है, तो माया देवी को भगवान के पीछे रहते हैं, तो माया देवी क्या करते हैं, जया सम्मोहित जीवम, इस सब जीवों को मोहित करके रखते हैं, मोहित करके रखे हैं। आत्मान त्रिगुणात्मक, हम वो त्रिगुण में नहीं है, त्रिगुण से ऊर्जे है, भगवान को पढ़ा शक्ति है, भगवान को उन्नत कर सकती है भगवान, लेकिन फिर भी हम कोई त्रिगुण में, त्रिगुण के अधीन में हम सोचते हैं, हम त्रिगुण में हैं, हम त्रिगुण हैं, ये अनर्थ है, ये रोग है, ये भवरोग है, ये काम रोग काम क्रोध रोग इत्यादि जो है ये भवरोग है। इसी रोग का मेडिसिन व्यासदेव ने दिए, कैसे ना, अनर्थो वसमं साक्षात भक्ति योग मधुक्यते लोकस्य अजान्त विद्वान चक्रे साधक संहिता। ये सब रोग ये नहीं जानते हैं, जो उनका काम रोग है, जो भव रोग है, उसका कैसे निराकरण करेंगे, उसका कैसे दूर करेंगे, वो लोग नहीं जानते हैं, अज्ञान में है। लेकिन व्यासदेव वो विज्ञान विद्वान व्यक्ति है, तो भगवान का अवतार है, तो इसीलिए उन्होंने शास्त्र संहिता के भागवत बनाए रचित किए। चक्र शास्त्र संहिता, ये भागवत शास्त्र ऐसे है जस्यान वही सूर्यमाणाया। अगर आप पूरी तरह सुनेंगे तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह नहीं सुनेंगे, सिर्फ सुनने के लिए कोशिश करेंगे, जस्यान वही सूर्यमाणाया कोशिश करेंगे सुनने के लिए, अब सुनने आरंभ करते हैं तो क्या होता है ना, भक्ति उत्पत्ति पुंस, भगवान के पास भगवान को हमारा भक्ति हो जाता है, भगवान से हमारा भक्ति हो जाता है। और उसका जो गौण पद है, मुख्य पद को छोड़ो, मुख्य पद क्या है, भगवान प्रेम जागृत होगा। जो गौण पद है, जो सेकेंडरी रिजल्ट है, वो क्या है ना, शोक मोह भय पाप, शोक मोह भय, ये तीन है, ये भौतिक जगत का लक्षण है। हमारा जो कुछ है वो चले जाने से हमारा हम शोक करते हैं, अतीत के लिए हम शोक करते हैं, वर्तमान में हम मोह में हैं, जैसे अर्जुन मोह में थे, भगवत गीता सुनने के बाद उन्होंने बोले प्रभु हमारा मोह नष्ट, मोह हमारा मोह दूर हो गया। इस तरह भागवत सुनने के बाद हमारा मोह चला जाएगा और भय भी चला जाएगा। भौतिक जगत में जो सब सब सबका भय है, सबका भय है, तो वो जो शोक मोह भय ये सब चला जाएगा। तो ये है भगवान विष्णु के बारे में, अगर हम सुनेंगे वो हमको मंगल प्रदान करेगा। स्वस्तिनो वासुदेव विष्णु दधातु, स्वस्तिनो नारायण प्रभवी, नर नारायण तो भगवान का अवतार है, ये बताया गया है। भगवान जब अर्जुन के साथ अवतार लिए तो नर नारायण का अवतार बताया गया है। तो स्वस्तिनो पद्मनाभ पुरुषोत्तम दधातु, भगवान का एक नाम पद्मनाभ है क्योंकि उनका नाभि से एक पद, नाभि पद्म की तरह दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है भगवान का नाभि, तो वहां एक पद्म उत्पन्न होता है, तो उसको पद्मनाम बोलते हैं, भगवान को पद्मनाम बोलते हैं। तो उसी पद्म से ब्रह्मा जात होते हैं, ब्रह्मा आते हैं, इसलिए ब्रह्मा को पद्म से बोलते हैं। तो वो पद्मनाभ हमको मंगल देंगे, स्वस्तिनो पद्मनाभ पुरुषोत्तम दधातु, तो पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम बताया गया है भगवत गीता में, अर्जुन ने ये वर्णन करते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पुरुषं सच्चुतं पुरुषं भवा, आप सब समय पुरुष होते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु, भगवान पुरुष है। भगवान एक बार स्त्री रूप में आए थे, मोहिनी रूप में आए थे, ये असुरों को मोहित करने के लिए, जब जब समुद्र मंथन में जो अमृत निकला, भगवान के एक अवतार है वो है क्या है जो अमृत लेकर आए धन्वंतरी, वो भगवान का अवतार है, तो धन्वंतरी के हाथ से वो असुरों ने पकड़ लिए, ले गए झपड़ लिए अमृत को ले गए, तो उनको मोहित करने के लिए भगवान ने मोहित रूप लिए। तो मोहित रूप धारण करके हम भगवान ने सब जितने असुरों से असुर थे सबको मोहित कर दिए, और जो अमृत है वो अमृत को देवताओं को दे दिए। बहुत सुंदर एक श्लोक है भागवत में, भागवत में अंतिम में श्री गोस्वामी बताते हैं, जैसे भगवान ने मोहित रूप धारण करके असुरों से बचाकर देवताओं को वो अमृत बंटन किए, इस तरह जो भक्त लोग हैं वो व्यासदेव ने इसी अमृत को भक्त को देते हैं, तो जो वेद समुद्र है, वेद के एक समुद्र है, उसको मंथन करके व्यासदेव ने ये अमृत निकाला, ये अमृत है भागवत। तो ये अमृत को व्यासदेव ने भक्तों को देते हैं। तो इसे भगवान ने पद्मनाभ जो है वो हमको मंगल देंगे। पद्मनाभ स्वस्तिनो पद्मनाभ पुरुषोत्तम धातु, वो पुरुष है। वो पुरुष का मतलब क्या है, प्रभुपाद बताते हैं। पुरुष का मतलब है उपभोगकारी, एंजॉयर। पुरुष मतलब एंजॉयर। तो इस भौतिक जगत में जो हम अपने को पुरुष बोलते हैं या स्त्री, कोई अपने को स्त्री बोलते हैं, लेकिन सब पुरुष अभिमान करते हैं। सब मैंने एंजॉयर बनने के लिए जाते, सब एंजॉयर सोचते हैं, अपने आप को एंजॉयर सोचते हैं, उपभोग कर सोचते हैं। लेकिन अगर हम जानेंगे भगवान ही उपभोग करिए तो हम शांति पाएंगे। भगवत गीता पंचम अध्याय में 29 से वर्ष में बताए भगवान उपदान जगत शाम, भगवान ही उपभोग करिए, हम उपभोग कर नहीं है। तो हम भगवान को उपभोग कर सोचेंगे, मानेंगे, तो वो ही हमको मंगल देंगे, शांति देंगे। स्वस्तिनो पुरुषोत्तम धातु, स्वस्तिनो विश्वक्षीरण विश्वेश्वर, ये भगवान के बहुत सारे नाम, विश्व विश्व का वो ईश्वर है। और स्वस्तिनो ऋषिकेश्वर धातु, भगवान को एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब है ये जो हमारा जो इंद्र है, जैसे हम आंख में देखते हैं, कान में सुनते हैं, ये सब इंद्रिय हमारा इंद्रिय है, इसका कंट्रोलर है भगवान। तो इसलिए भगवान को ऋषिकेश बोलते हैं। तो भक्ति क्या है, ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। इसी इंद्रिय से हम अगर भगवान के भक्त सेवा करेंगे तो उसको भक्ति कहेंगे, ये भक्ति है। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो ये ऋषिकेश ही हमको मंगल प्रदान करेंगे। हरि धातु, भगवान के नाम है हरि। हरि का मतलब क्या है, चेतन चट्टान में बताया गया है हरि का अनेक अर्थ। मुख्य दुई काम, दो ही मुख्य काम, दो ही क्यों मुख्य है, दो मुख्य मीनिंग है हरि का। क्या है ना, सर्व अमंगल हरे, हरि मतलब वो सब अमंगल को दूर कर देते हैं, सर्व अमंगल हरे। एवं और क्या है ना, प्रेम दिया हरे माना, वो प्रेम देते हैं, प्रेम देते हैं, प्रेम देकर उसको मन को हरण करते हैं, सबका मन को खींच लेते हैं। तो ये हरि का मुख्य नाम, मुख्य अर्थ है हरि का। तो ये हरि ही हमको मंगल प्रदान करेंगे। स्वस्तिनो वैद्य हरि, स्वस्तिनो अंजनाशुभ हनुमान भागवत धातु, अंजनाशुभ जो हनुमान है, हनुमान ही भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, वो हमको मंगल प्रदान करेंगे। मंगल भवन मंगलकारी मंगलहारी मंगल प्रदान करेंगे। और स्वस्ति स्वस्ति सुमंगल केशव महान, श्री कृष्ण चिदानंद सर्वेश्वर सुधात, वो कृष्ण भगवान। तो जो और सब जो जितने नाम बताया गया है वो तो भगवान के वंश है या हंस का हंस कला बताते हैं। हंस है भगवान विस्तार है और विस्तार का विस्तार है, हंस या कला। लेकिन कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण जो है वो मूल भगवान है, उनसे भी बहुत सारे अवतार आते हैं। इस तरह नंदोत्सव में जो ब्राह्मणों ने स्तुतिवाद किए और बहुत सारे पुराण इत्यादि पाठ किए, और नंद ने वो सब गाय सब दान किए, तीसरे गाय जे गाओ वृषा वसुंधरा हरिद्रा तैल वृषिता विचित्र धातु वर्णस्र कांचन मान वस्त्र वस्त्र कांत वस्त्र कांतन मारेंगे। तो जो गांव है गोए हैं उनसे स्वर्ण का भूषण का आभूषण का स्वर्ण का उसको दान किए। इतने कितने धनी थे इसे आप पता लगा सकते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं वहां स्वयं लक्ष्मी देवी है। जहां लक्ष्मी देवी है वहां क्या कमी है थोड़ा, वहां स्वयं लक्ष्मी देवी है। तो इस तरह जो ब्रज में आनंद मात्रा है, ब्रज में उत्सव हो रहा है, ब्रज नंद की आनंद वयो जय कन्हैया लाल की, तो उसी हम हमारा पर्वत को विश्राम देंगे। जय श्री भागवतम की, जय श्री गोपाल महाराज की, जय श्री गुरुदेव की, अनंत कोटि वैष्णव की जय हो। तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, अगर कोई कुछ तकलीफ हुआ तो पूछ सकते हैं, तो हम बता देंगे। हम क्या चाहते हैं कहने के लिए वो कुछ तो अलग होता है।
Nice, big bucks.